गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रूपाली श्रीवास्तव की लिखी कहानी परफेक्शन। क्या जरूरत है आपको इतना परफेक्ट होने की? आई हेट यू, दबी आवाज में गिन्नी ने कहा। अचानक देवरानी के मुंह से यह सुनकर वो सन्न रह गई। कार गांव की सीमा पर बने बड़े बाजार के पास पहुंची तो उज्ज्वला ने प्रतीक को कुछ मिठाई, सब्जियां, फल वगैरह लाने को कहा और थैला थमा दिया। पहले तो प्रतीक ने मुंह बनाया, पर यह कहते ही कि माँ पापा गांव से बाहर कहाँ आ पाते होंगे रोज, फिर बुजुर्ग हैं, पता नहीं घर पर क्या हो क्या नहीं, वह बेचारे खुद ही जैसे तैसे रहते हैं यहाँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आज रात के खाने का इंतज़ाम कर लो, बाकी जो कम पड़ेगा पापा की स्कूटर से कर ले आना। हम तो कार से जा ही रहे हैं, एक घंटे की देर ही सही। चलिए ना, उतरिए कार से। उसके इतना कहने पर प्रतीक चुपचाप खिसियानी मुस्कुराहट देकर कार से बाहर उतर गए। साथ ही बच्चे भी चिप्स चॉकलेट के चक्कर में पीछे पीछे चल दिए। देवर जो अभी तक बैठा सुन रहा था बोला, दादा अकेले कैसे संभाल पाएंगे, बच्चे भी सामान भी। चलो मैं आप सब लोगों के लिए कुछ समोसे जूस लेकर आता हूँ। और यह कहकर वो भी कार के आगे की सीट से उठकर चल दिया। पीछे के सीट पर बैठी उज्ज्वला ने गोद में 11 महीने के बेटे को लिए बैठी देवरानी का चेहरा और उसके चेहरे के भाव दोनों को तभी देख लिया था जब उसने प्रतीक को सामान लाने को बोला था। जैसे कह रहा हो, कहीं ये ना उतर जाए मारे मोहब्बत के, फालतू की चपत लग जाएगी। यह बोलकर कोशिश भी की कि अरे बता तो दिया था कि हम सब 4 दिन की छुट्टियां गांव में बिताएंगे, उन्होंने ज़रूर सब इंतज़ाम कर रखा होगा, इतने इतने दिनों पर हम लोग आते हैं, इतना भी नहीं कर सकते वो लोग तो जाने का फ़ायदा क्या जब सब खुद ही करना हो। पर उज्ज्वला ने बीच में ही बात काट दी और थैला थमा दिया था प्रतीक को। गिन्नी ने बिना रुके धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया पति के जाते ही। क्या ज़रूरत है आपको इतना परफेक्ट होने की भाभी, आई हेट यू, जब से हमारी शादी तय हुई है कान पक गए हैं आपकी तारीफ सुन सुनकर, जिसको देखो वही, उज्ज्वला से सीखो, उज्ज्वला होती तो ऐसा करती, भाभी होती तो वैसा करती, और शादी के बाद जब पहली बार गांव ठाकुर जी की पूजा के लिए गई तब भी हर कोई आप ही की तारीफ कर रहा था। वाह क्या बात है, नई बहू तो मैं थी, बच्चा होने पर मैं 1 महीने गाँव रही तब भी यही हाल, आखिरी दिन तक पता है मम्मी ने क्या कहा एक दिन, उज्ज्वला घर में एक आलू पड़ा हो तब भी उससे 20 तरह के व्यंजन बना के सबका पेट भर देती है, एक तुम और तुम्हारी जिठानी कि तुम लोगों को कुछ काम ही समझ नहीं आता, अगर एक चीज घर में ना हो तो हाथ पैर तोड़कर बैठ जाती हो, पता नहीं कितने बड़े घर से आई हो, सीखो कुछ उससे, बिगड़ी से बिगड़ी बात या चीज किसी को पता चले उससे पहले कब कैसे ठीक कर देती है, इतने बड़े घर की बेटी है, बड़े शहर में पली बड़ी, उस पर इतनी अच्छी ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी सिर्फ प्रतीक के कहने पर, और आज तक चेहरे पर शिकन नहीं है, इतनी साधारण रहती है तब भी तुम सबसे सुंदर दिखती है, नाभि तक घूंघट कराया है हमने उससे, मिनी स्कर्ट जीन्स पहनने वाली जो थी वो कभी भी ना शिकायत की ना बुरा माना, तुम दोनों यहीं आसपास की हो फिर भी आंख खुलते ही शीशे के सामने लीपा पोती शुरू, बतकही करा लो बस, तुम दोनों ही एक नंबर की बदतमीज हो, ना कोई रूप ना रंग, उस पर कोई ढंग शऊर भी नहीं, तुम नौकरी करती हो थोड़ा कमा लेती हो बस यही एक गुण है, परिवार में रहने लायक नहीं हो तुम लोग, जुबान इतनी कड़वी कि दिल फट जाए, पति ने सिर चढ़ा रखा है, पता नहीं कौन सा जादू चलाया, कुछ बोलो तो हमारे बेटे ही जुबान लड़ाने लगते हैं, अच्छा तैयार किया है अपने हिसाब से। ना चाहकर भी उज्ज्वला को जवाब देना पड़ा। देखो बेटा, उज्ज्वला बिल्कुल संयत एवं चुने हुए शब्दों में बात कर रही थी, जानती ही थी तिल का ताड़ बनाने में दोनों माहिर हैं। देवरानी थी पर उसको छोटे बच्चे की नज़र से देखती थी, उसके हड़बड़ाने और कामचोरी की आदत से भी परिचित थी, जबकि शादी के बाद 3 दिन ही वह परिवार के साथ रही थी, पर पूत के पांव पालने में जो दिख गए थे। फिर देवर को छोटा भाई माना था और वादा भी किया था अपने सगे भाई की तरह प्यार करेगी, चाहे वक्त और परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों। लेकिन देवर अब बिल्कुल बदल गए हैं, शायद वैसे ही थे हमेशा से, किसे पता। वो बोली, देखो बेटा, मैं जो करती हूँ वो परिवार व घर में सबकी ज़रूरत और समय के हिसाब से करती हूँ, ना तो किसी को नीचा दिखाने के लिए और ना ही तारीफ के लिए, बस ये तो मेरा फ़र्ज है। फिर जब मैं ब्याह कर आई तब इस घर की परिस्थितियाँ, विचार, रहन सहन सब कुछ अलग था। उस समय और आज के समय और किसी भी चीज़ में अब कोई मेल नहीं है, और ना ही हम दोनों में। हम दोनों का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, अपनी अलग सोच है, हर कोई वही समान कार्य अपने तरीके से करता है। फिर तुलना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, गिन्नी ने बेरुखी सी तेज़ आवाज़ में कहा। ऐसा है, आप बस रहने ही दीजिए, आपके सब कुछ ठीक कर देने की आदत की वजह से ही सबकी आदत खराब हो गई है। अब किसी को कुछ भी करने की आदत नहीं रह गई, हर चीज में परफेक्शन चाहिए। अरे सबको खुश रखा पर फायदा क्या है, दादा के बारे में सबको पता है वो कैसे हैं, फिर इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है। हाँ, पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में और आपकी कदर दादा की नजर में, गली के बच्चों से भी पूछो तो बता देंगे, सब मुंह पे बेइज्जती करके जाते हैं आपकी, और वो भी दादा के सामने। वो भी कम नहीं, हमेशा जानबूझकर जलील करते हैं, खास तौर से जब सब इकट्ठे हों। मैं तो नौकरानी नहीं बनने वाली आपकी तरह, फिर चाहे कोई कितनी बुराई कर ले। मैं 1 महीने रही गांव में, मुश्किल से 3-4 बार ही खाना बनाया होगा। मम्मी पापा खाना बनाकर थाली कमरे में पहुंचाते थे या बुलाने पर बस खाना खाने आती थी। मेरे पास तो बच्चे का बहाना भी था, कहकर वो ठहाका मार के हंसने लगी। इतना कमाते हैं सब, काम वाली तो रख ही सकते हैं। वैसे इस घर में पहले खानसामा नौकर सब थे, आप बनी रहो नौकरानी। एक बात हाँ, और जितना हो सके जहाँ मैं हूँ वहाँ से दूर रहिएगा हमेशा। गिन्नी का प्रलाप चल ही रहा था तभी प्रतीक और सब एक साथ सड़क पार करते दिखे। प्रतीक ने इशारे से कार की डिक्की खोलने को कहा। सामान रख कार में बैठ सब गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव पहुंचकर उज्ज्वला सारी बातों को भूल बिना मलाल घर की चौखट को प्रणाम कर घर में दाखिल होती है। आंगन में प्रतीक और उज्ज्वला मिलकर खाट बिछाते हैं और सब वहां सुस्ताने लगते हैं। उज्ज्वला खड़ी इंतजार करती है तभी मम्मी पानी और बर्फी घर के निकाले खोए से बनी लाकर देती हैं सबको, ये कहते हुए कि प्रतीक को बहुत पसंद है तो 2 हफ्ते से बस चाय के लिए दूध लेकर सारा बचा कर रखते थे। पानी पीकर गिन्नी बच्चे को लेकर कमरे में थकान और चक्कर का बहाना करके लेट जाती है। मम्मी थोड़ा इंतज़ार करती हैं पर उलझन में पड़ी उज्ज्वला को देख बूढ़ी आंखें सब समझ जाती हैं। मम्मी रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग गई। उज्ज्वला जी कड़ा किए कुछ देर देखती रहती है। प्रतीक के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित भाव आते जाते रहते हैं। तभी अचानक उज्ज्वला अपना घूंघट थोड़ा ऊपर खींच आंचल कमर में खोस रसोई घर में आ गई। मम्मी के हाथ से सब्जी लेकर काटने लगी। बोली, यह तो रोज आप ही करती हो ना, पर मैं आ गई हूँ, अब मेरे रहते अब नहीं। आप जाइए, बात करिए, मैं सब कर लूँगी। मुझे पता है कहाँ क्या रखा है और बाकी सब मैं साथ लाई हूँ हमेशा की तरह। मम्मी आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगा लेती हैं। फिर गाय लगाने के लिए तपन भैया को बुलाने चली जाती हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा दूध क्यों चाहिए, ताज़ा दूध मिले इसलिए शाम को गाय नहीं लगवाई थी मम्मी ने। मम्मी के जाते ही प्रतीक रसोई घर में बर्फी मांगने के बहाने आए, गले लगाकर बिना कुछ बोले जाने लगे। लेकिन फिर अचानक पलटकर भर्राई आवाज में बोले, सॉरी उज्ज्वला, थैंक यू मेरे मकान को घर और लोगों को परिवार में बदलने के लिए पहले दिन से। अभी आपने सुनी रूपाली श्रीवास्तव की लिखी कहानी परफेक्शन। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया था पूजा श्रीवास्तव ने।